last discussion was between Srila Prabhupada and Hanuman Prasad Pradhan Baiji at the Gita Press ashram where he's staying. There's also a kirtan and also some recorded fragments of the conversation. The next recording is the same evening, 3rd January 1971, Srila Prabhupada speaks to a gathering of university students and members of the Gorakhpur community after Aarti from Chaitanya Charitamrita.
तस्मै श्रीगुरवे नमः श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं गुणभूतले स्वयं रूपगदामयं ददाति समदान्तिकम् वन्देऽहं श्रीगुरुश्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगणविघ्नहारनितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सगणनिरता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति सिद्धान्तसरस्वतीनाम्नि श्रीकृष्णकरुणासिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपीषु गोपिकानां सप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी विष्णुभानुसुचीते वीतनुमामि हरिप्रिये पञ्चाकल्पदर्भश्च कृपासन्निधैव पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः.
What is Dr. Ram? So I have to speak in English or Hindi? If I speak
Hindi
in...
Hindi would be much better.
Yeah, but
this
my
Hindi
student...
Hindi mein bharat loh sunay thi. Hindi mein jara loh
hai. Bhot jyada hai.
Angrezi bharat loh hai.
Ye bachari samajh nahi paayenge.
Mahi rah nahi samajh paayenge.
कोई बात नहीं है, सब है यार, एक दफे इंग्लिश में
तो अंग्रेजी में बोलो जरा अच्छा कि हमारे तो हालत
है
भाषा के अनुसार प्रवचन
नहीं
आता है आप बता रहे हो
अंग्रेजी में
ही
होते हैं
अंग्रेजी
में
होते
हैं ये लोग भी नहीं समझेंगे हैं अंग्रेजी में मतलब
हिंदी अब ज़्यादा बोल नहीं सकता मैं
कह रहा हूँ
तो कह रहा अष्टम दिवस तारे पूछे सार्वभौम सात दिन करो तुम्हें वेदांत श्रवण. एक सार्वभौम भट्टाचार्य थे उस समय चैतन्य महाप्रभु का समय में बड़े भारी नहीं आए और शांकर संप्रदाय को फॉलो करने वाला था निराकारवादी और चैतन्य महापुरुष से उनसे मुलाकात हुआ जगन्नाथपुर में. ये सार्वभौम भट्टाचार्य पुरी का जो महाराज उनका सभा पंडित थे बड़े बड़े सन्यासी को सिखाते थे. तो सार्वभौम भट्टाचार्य से मुलाकात हुआ किस तरह से कि चैतन्य महाप्रभु जब पहले जगन्नाथ मंदिर में दर्शन करने गया और भगवान को श्रीमूर्ति देख करके उसी समय मूर्छित हो गया. अनकॉन्शियस हो गया. सार्वभौम भट्टाचार्य उस समय मंदिर में उपस्थित थे तो वो तो पंडित थे सब चीज़ जानते थे. देखा कि इस प्रकार भाव ये तो साधारण मनुष्य नहीं है. तो वो देखा इसका क्या परिस्थिति है तो आंख में थोड़ा रुई लगा दिया, देखा रुई थोड़ा थोड़ा हिल रहा है और सब स्टॉप हो गया फंक्शन। तो उस समय जो नौका चाकर उधर उपस्थित थे उनको बोला जो ये साधु को सन्यासी को हमारा घर में ले चल, और ले गया। और फिर उनका पीछे चैतन्य महापुर में का साथ में जो आने वाले थे उनके पार्षद सब वो भी मंदिर में पहुंचा, देखा कि चैतन्य महापुर है नहीं, परंतु जितने सब दर्शक थे वो आपस में बातचीत कर रहा कि ऐसे बंगाल से एक नौजवान सन्यासी है, देखने को बड़ा सुंदर है, और ये जगन्नाथ मंदिर में आते ही और दर्शन करके बिल्कुल मूर्छित हो गया। तो बोल वाला चल रहा था तो लोग समझ गया कि चैतन्य महापुर आए थे और फिर किधर कोई ले गए होंगे, ऐसा मूर्छित हो तो होता ही था, जानते ही थे। तो फिर सबको ये सार्वभौम भट्टाचार्य का एक शाला वो भी बड़ा भारी पंडित, उनसे परिचय था गदाधर पंडित से, तो वो सब ले गया सार्वभौम भट्टाचार्य जी के बाद मकान में। और उधर जाकर के ये जितने चैतन्य महाप्रभु के सब परिषद थे सब हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम ये कीर्तन करने लगे। तो फिर आस्ते आस्ते चैतन्य महाप्रभु की संगा आ गई और फिर स्नान स्नान करके जगन्नाथ जी का प्रसाद पा करके सार्वभौम भट्टाचार्य जी का जो पिता और चैतन्य महाप्रभु के दादा नाना वो क्लास फ्रेंड थे सौपाठ, तो इससे कुछ गांव का भी संपर्क हो गया। तो सार्वभौम का कुछ स्नेह भी हुआ क्योंकि पुत्र स्नानी हुआ, इसलिए वो कहा जो बेटा तुमने इतना जल्दी सन्यास ले लिया, तुम्हारा 24 बरस मात्र उम्र है और तुम सन्यास किस तरह से रक्षा करोगे, सब समय वेदांत पढ़ो और उसी में मग्न रहो तभी तुम सन्यास रक्षा कर सकोगे। तो बोला महाराज ठीक है, आप तो हमारा पिता का सदृश है, मैं तो बालक है आपके पास, और आप जैसे जैसे कहेंगे हम उसी प्रकार काम करूँगा, आप तो सन्यासी का भी गुरु है, ऐसे कुछ सम्मान उनको दिया। फिर वो वेदांत तो शुरू किया, सार्वभौम भट्टाचार्य वेदांत तो पढ़ने को शुरू किया, चैतन्य महापुरुष सुनने को लगा और 7 रोज तक केवल सुना। तो सार्वभौम भट्टाचार्य को कुछ संदेह हुआ कि ये लड़का सुन रहा है कुछ पूछता नहीं केवल सुनता है, तो क्या सुन रहा था इसको पूछा जाए। तो इसलिए 7 दिन पर्यंत ऐसे करे श्रवण भालमंद नहीं कहे बोसी मात्र सुने। चैतन्य महाप्रभु सार्वभौम भट्टाचार्य को जो विचार प्रस्तुत कर रहा था उसमें अच्छा है कि बुरा है कुछ नहीं बोलता था, केवल सुन रहा था। अष्टम दिवस तारे पूछे सार्वभौम, 8वां दिन में सार्वभौम भट्टाचार्य उनसे पूछा, क्या पूछा, 7 दिन करो तुम्हें वेदांत श्रवण भालमंद नहीं कहो रहो मौन धरी बुझो कि ना बुझो यह बुझित ना। कहता मैं तुमको वेदांत विषय 7 दिन प्रवचन दे रहा हूं और तुम केवल चुप से सुन रहा है, और क्या ठीक हुआ कि नहीं ठीक हुआ कुछ प्रश्न ऐसे तो होनी चाहिए कि क्या मतलब है तुम्हारा एक चुपचाप सुनते हो। भालमंद नहीं तो बुझो कि ना बुझो या बुझा, तो इसलिए हमको समझ में ही नहीं आता जो तुम वेदांत श्रवण करके कुछ उपलब्ध कर रहा कि नहीं, केवल सुन रहा है, क्या बात है? उधर आश्चर्य हो गया। प्रभु कहे मूर्ख आमी नाही उद्धार। अब प्रभु चैतन्य महाप्रभु कह रहे महाराज मैं तो बहुत बड़ा मूर्ख है और हमारा कुछ वेदांत का उद्धार भी है। देखिए ये चैतन्य महाप्रभु कहने का ये आगे जाके समझाएंगे। चैतन्य महाप्रभु अपने को मूर्ख ऐसे है बतलाया, वो मूर्ख तो नहीं थे, आगे जाके प्रमाण होगा। तो क्यों मूर्ख बताया? तो उनको कहने का मतलब है कि आजकल का दुनिया में सभी मूर्ख है, वो वेदांत तो क्या समझे, ये कहने का उनका। इसलिए वो सब मूर्ख का प्रधान प्रतिनिधि होगा कि मैं तो मूर्ख है और वेदांत हमारा अध्ययन भी है नहीं। तुम्हार आज्ञा से मात्र कोरिए श्रवण। आप क्यों? क्योंकि आपने कही कि तुम बहुत कम उम्र में सन्यास लिया है, इसलिए तुम्हारा ये सन्यास धर्म रक्षा करने के लिए तुमको चाहिए वेदांत श्रवण का, तो इसलिए मैं श्रवण कर रहा हूँ। असल में मैं मूर्ख है और वेदांत का कुछ अध्ययन भी नहीं है और ना हम वेदांत को समझने का कोई योग्य पुरुष है। सन्यासी धर्म लागी श्रवण मात्र करी। आपने कही कि ये सन्यास का धर्म है कि सब समय वेदांत को पढ़े, इसलिए मैं सुन रहा हूं। और सन्यासी धर्म लागी श्रवण मात्र करी, तुम्हें जय अर्थ करो बुझीते ना पड़ी। हाथ थोड़ा अटैक कर लिया। केवल आपने कही कि सन्यास का उचित है वेदांत श्रवण करना चाहिए, इसलिए मैं बैठ बैठ के सुन रहा हूं। और आप जैसे इसको प्रस्तुत कर रहे हैं उसको हम कुछ अर्थ नहीं समझ रहे, बिल्कुल नहीं समझ रहे बिल्कुल। देखिए अब कौन मूर्ख हुआ? क्या भट्टाचार्य जो कहे ना बुझी है न ज्ञान जार, बुधिवार लागी से हो पूछे पुनर्वार। भट्टाचार्य कहते हैं मान लिया तुम वेदांत को समझ नहीं रहे हो, मैं जैसा बोल रहा हूं, तो कम से कम तो पूछना भी तो था। महाराज हम कुछ नहीं समझ रहे हैं, थोड़ा और अच्छी तरह से समझाइए, तो तुम चुपचाप क्यों बैठे रहे? बड़ा इंटरेस्टिंग है। तुम चुपचाप क्यों बैठे हो? तो कुछ बतलाना भी तो था। तुम ही सुनी रहो मऊ न मात्र धोरी, हृदय की आशे तुम्हारे बुझी तना। भट्टाचार्य तो बड़े विद्वान थे, वो समझ गया जो जो लड़का है जैसे कह रहे हैं इसका और कुछ मतलब है, वो समझ गया। तो इसलिए कहते हैं जो तुम सुन सुन के चुपचाप रहते हो इससे मालूम होता है कि तुम्हारे भीतर में कुछ मतलब है। प्रभु कहे सूत्रेर अर्थ बुझिए निम्न। आप चैतन्य महापुर कहते हैं महाराज ये जो सूत्र आप बताते हैं ये तो हम बहुत अच्छी तरह से समझ लेते हैं। और आपका जो एक्सप्लेनेशन है वो हमको कुछ समझ नहीं आता। सूत्र तो हम बहुत अच्छे से समझ लें, वास्तविक समझ में क्या मुश्किल है? अर्थात ब्रह्म जिज्ञासा। अब ब्रह्म को ये जो मनुष्य जीवन है, अब ब्रह्म वस्तु क्या चीज है उसको जिज्ञासु होनी चाहिए। ये तो सब कोई समझ पाते हैं, इसमें कोई मुश्किल नहीं है। और उसका उत्तर जो है वेदांत में कहते हैं जन्माद्यश्यता। जो ब्रह्म वस्तु जो है वही वस्तु है जहां से सब चीज का जन्म होता। तो ये तो सब कोई समझ गए, तो चैतन्य महाप्रभु क्यों नहीं समझे? इसलिए कहते हैं जो सूत्र का जो अर्थ है वो तो बड़ा सरल है, अब मैं समझ लेता हूं। और आप जो उसको एक्सप्लेनेशन करते हैं वो हमको बिल्कुल नहीं समझ में आता। फिर कहते हैं प्रभु कहे सूत्रेर अर्थ बुद्धि निर्मल। Nirmal ka tak very clear. I can understand the meaning of the sutras very clearly, without any doubt. Tomar vyakha suni mona hoy to because. और आपको जो अथवा बताते हैं वो शंकर सुन करके हमारा जो हृदय है वो विकल हो जाता है. हाँ, बिल्कुल परेशान हो जाता है, समझे ना. अब ये चैलेंज हुआ. प्रभु कहे सूत्र, हाँ सूत्र अर्थ भाष्य कहे प्रकाश किया. हाँ, चेतन महाप्रभु कहते हैं अगर कोई सूत्र का भाष्य लिखना चाहिए, टीका टिप्पणी लिखना चाहिए, बोलना चाहिए, कमेंट, तो उसको आओ निर्मल कर देना और प्रकाश कर देना. और आप जैसे व्याख्या कर रहे हैं वो कैसा है, तुम्ही भाष्य कहो सूत्र अर्थ आख्या दिया. और तुमने आपने जो सूत्र का व्याख्या कर रहे हैं वो तो आप उसको और ढक देता है, वो सूत्र का तो प्रकाश नहीं होता. जैसा सूर्य का रश्मि जो है वो तो स्वयं प्रकाशमान है, उसको और किसी को प्रकाश करने की जरूरत ही नहीं है. परंतु अगर कोई बादल ला करके सूर्य के सामने रख दिया जाओ, अच्छी तरह से समझो आपका ऐसी बात है. हाँ, आपका अर्थ जो है वो और उसको ढक देता है. इस सूत्र का तो अर्थ बहुत प्रकाश है, उसमें कोई मुश्किल नहीं है, समझ में कोई मुश्किल नहीं है. परंतु आपका जो व्याख्यान है उसको ढाक देता है. जैसा आजकल का भगवद गीता का व्याख्यान करते हैं, कहते हैं जन्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र समवेदादि सब. ये कुरुक्षेत्र जो है कोई कहते हैं ये शरीर, आप लोग जानते हैं ऐसे व्याख्यान होता है. अब देखिए धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र, कुरुक्षेत्र अभी तक मौजूद है, आप लोग सब लोग जानते हैं. उस दिन अमृतसर से हम लोग आ रहे थे तो कुरुक्षेत्र स्टेशन में गाड़ी खड़ा रहा और हमने इनको वो समझाया, देखो जी ये कुरुक्षेत्र स्टेशन आज तक मौजूद है, इधर ही कुरुक्षेत्र है. और कोई कोई कहते हैं कि कुरुक्षेत्र का अर्थ है ये शरीर. तो और धर्म क्षेत्र आज तक भी कुरुक्षेत्र में सब धर्म जागरण करने के लिए, तीर्थ करने के लिए कुरुक्षेत्र अभी तक जाते हैं. और वेद वेद में ऐसे लिखा है कुरुक्षेत्रीय धर्म जागे. तो वेद बहुत पुराना जमाने से चालू है जो कुरुक्षेत्र धर्म क्षेत्र है. तो भगवद गीता में व्यास देव जी कहते हैं धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र, तो उसमें समझ में क्या मुश्किल होता है. बाकी कोई कोई आदमी कहते कुरुक्षेत्र तो ये हुआ, ये कोई और कुछ है, और कुछ है. आजकल गीता का व्याख्यान ऐसी चल रही है, आप लोग सब जानते हैं. तो इसीलिए गीता पढ़ते पढ़ते सब बुढ़ा हो जाते हैं, बल्कि कुछ समझते नहीं, वही समझते हैं कि दुनिया में संसार में किस तरह से आबद्ध होकर रहा जाए. तो आपका असल में लेता नहीं, इसमें कोई उपकार नहीं होता. जैसे डॉक्टर राधा कृष्ण गीता का ऊपर लिखा है कमेंट, और वो कहते हैं जब वो सूत्र श्लोक है मन मना भव मद भक्त मद जाजी मांग नमस्कुरु. हाँ, ये अर्थ क्या है, बहुत सरल है. भगवान कहते हैं कि सब समय हमारा चिंतन करो और मन मना भव मद हमारा भक्त बनो, हमको नमस्कार करो, इस तरह से तुम भक्ति योग साधन करो. हम मैं तुमको निश्चित कहता हूँ फिर इस जीवन का बाद तुम हमारे पास चले जाओ. ये तो कोई अर्थ उसमें कोई मुश्किल नहीं है. बाकी डॉक्टर राधा कृष्णन को बोलता है जो ये जो भगवान कहना है कृष्णा जो मन मना भक्त, ये कृष्ण को नहीं तो कृष्ण का भीतर जो चीज है. अब देखिए उनको मालूम नहीं है जो कृष्ण का भीतर बाहर कुछ नहीं, क्योंकि कृष्ण इज एब्सोल्यूट. एब्सोल्यूट का भीतर बाहर कैसा होगा. हाँ, ना ना शास्त्र में कहते हैं अभिन्नत्या नाम नाम एब्सोल्यूट का अर्थ ही होता है ब्रह्म इति परमात्मा इति भगवान इति शब्द. हाँ, बदंति तत्विद सत्यम जद ज्ञानम अद्वयम. भगवान का विषय जो ज्ञान है वो अद्वय ज्ञान है, केवल है. उसमें है कोई बाहरी चीज है नहीं। भगवान, भगवान का नाम, भगवान का शरीर, भगवान का रूप, भगवान की लीला, भगवान का परिकार, वैशिष्ट, सभी भगवान है। एब्सोल्यूट का अर्थ ही होता है। और डॉक्टर राधा कृष्ण कहते हैं जो उसका भीतर आउटपुट है, भूत है, समझे। इसी प्रकार कदर्थ करके, शास्त्र विचार करके हमारा ये जो भारतीय कृष्ण पतन हो गया, समझे। सब धर्म ज्ञान विहीन हो गया, सरल अर्थ नहीं लेंगे, इधर उधर का बात करते, रिसर्च कर रहे हैं। आज समाजी लोग रिसर्च करते हैं वेद का, तो वेद का अर्थ रिसर्च करने के लिए छोड़ दिया गया था। बड़े बड़े ऋषि लोग जो कोई मूर्ख आए जो रिसर्च करें, नहीं, वेद का अर्थ तो जिस तरह से है उस तरह से ग्रहण करना चाहिए। ये सब चैतन्य आगे सब बताएंगे कि वेदांत का अर्थ क्या चीज है। तो चैतन्य महाप्रभु कहते हैं सूत्र अर्थ भाष्य का ही प्रकाश। यदि अगर कोई सूत्र का भाष्य आपको लिखना है तो उसको आओ प्रकाशित कर। जैसे धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र समवेता युधिष्ठिर, ये तो सरल अर्थ है। कुरुक्षेत्र एक स्थान है, वो धर्म क्षेत्र भी है। और महाभारत का हिस्ट्री में जो दो भाई चचेरा भाई पांडव स्वरूप, वो लोग लड़ाई भी की थी और कुरुक्षेत्र का धर्म क्षेत्र जान करके उधर ही जान गए। तो इसमें अर्थ समझने की मुश्किल क्या है, इसमें हम क्यों मैं लगाता हूँ जिसे कुरुक्षेत्र का अर्थ है शरीर और पंच पांडव का अर्थ होता है पंचेंद्रिय और इधर उधर उधर क्यों, क्या जरूरत है। ये क्या कृष्ण छोड़ गया था कोई व्यक्ति को अर्थ लगाने के लिए, जो हमारे आगे और एक बड़े विद्वान आएंगे और वो उसका कमेंट। कृष्ण इतना मूर्ख था कि सबको सीधा सीधा बात नहीं कह करके एक आगे रख के लाएंगे वो कमेंट लिखा करके उसको समझा, ये कोई बात है। तो अगर कमेंट आप लिखते हैं तो आओ उसको प्रकाश कीजिए, उसका नाम है कमेंट, उसको और ढांक देने से क्या होगा। आदमी जैसे एक आदमी पूछा मास्टर जी का पास गया, मास्टर जी ये व्याघ्र का क्या अर्थ होता है, तो वो बोला दिया साधुल। वो बेचारे और परेशान हो गया, व्याघ्र का अर्थ क्या है ना साधुल, तो कह देता सादा सीधे व्याघ्र का अर्थ होता बाघ, सब कुछ समझ लेता है, नहीं वो कहे शार्दूल। तो इस प्रकार जो कमेंट लिखना है ये बेकार किया, ये चैतन्य महाप्रभु कहने का। चैतन्य महाप्रभु का कहने का मतलब है जब वेदांत का सूत्र हो तो मैं बहुत सरल है, समझ लेता, फिर आप ऐसा कमेंट करते हैं जो बिल्कुल उसको ढाक लेता है ना, ये आपका कमेंट का अर्थ हो। सूत्र अर्थ भाष्य का ही प्रकाश किया, तुम भाष्य कहो सूत्र अर्थ आच्छाद्य मीन्स कवरिंग, वॉट एवर यू आर स्पीकिंग यू आर सिंपली कवरिंग। सूत्र मुख्य अर्थ नाकर हो व्याख्या, मुख्य और गौण दो अर्थ होता, जब अर्थ समझ में नहीं आता तो गौण अर्थ होता। जैसा शास्त्र में कहते हैं कि गंगा का ऊपर एक घोष पल्ली, तो ये कोई पूछ सकता है कि गंगा तो जल है उसमें एक पल्ली कैसे, तो उसका अर्थ आप लगा सकते हैं कि नहीं बिल्कुल जल में नहीं है, गंगा का किनारे में एक घोष पल्ली है, ये अर्थ क्लियर हो। और जब बिल्कुल मालूम होता है इसका अर्थ, उसमें कोई संदेह नहीं रहता है, उसको कमेंट करने का कोई जरूरत ही नहीं, गौणार्थ करने का कोई जरूरत ही नहीं, इंटरप्रिटेशन करने का कोई जरूरत ही नहीं। तो चैतन्य महाप्रभु कहते हैं सूत्रेर मुख्य अर्थ नाकर, जो आप जो है सूत्र का जो मुख्य अर्थ है असल जो मतलब है उसको तो आप व्याख्यान ही नहीं करते, मुख्य अर्थ न करो व्याख्यान, कल्पना से तुम ही ताहा करो आच्छादन, और अपने एक कल्पना करके उसको आच्छादन कर रहे। उपनिषद शब्द से ही मुख्य अर्थ है। चेतन महाप्रभु कहते हैं कि उपनिषद जो है जो जैसे जैसे बताते हैं उसे वही उसका मुख्य अर्थ है। हाँ, उसको कल्पना करने की कोई जरूरत नहीं है। उपनिषद शब्द से ही मुख्य अर्थ है, से ही अर्थ मुख्य वैश्विक कृषक उसी को आलम्बन करके व्यास से वेदांत सूत्र का लिखे हैं। उसमें है कोई और अर्थवाद करने की कोई आवश्यकता है नहीं। मुख्यार्थ छारिया करो गौणार्थ कल्पना, अभिधा भित्ति छारी करो सर्वे सर्वे लक्षणा। कहते हैं आपका जो व्याख्यान करने की पद्धति जो है ये तो मुख्यार्थ को आप छोड़ दे करके एक कल्पना करके अर्थ कहते हैं, जिसको व्याकरण शास्त्र में कहते हैं कि अविधा वृत्ति छारी करो शब्द लक्षण। अविधा वृत्ति छोड़ करके अविधा वृत्ति लक्षणावृत्ति देखिए वेदव्यास निजतर सूत्र उद्देश्य कर छाड़िया जो गौणार्थ कल्पना कहा जाए शब्दर अविधा वृत्ति छाड़िया जो लक्षणा करा जाए ता अमंगलजनक प्रत्यक्ष अनुमान ऐतिह्य शब्द ये चारि प्रकार प्रमाण मध्य श्रुति प्रमाण अर्थात शब्द प्रमाण ही सकल प्रधान। ये अमृत प्रभाव भाष्य श्री भक्तिनाथ ठाकुर कहते हैं चार प्रकार के प्रमाण है प्रत्यक्ष अविधा और ऐति प्रत्यक्ष ऐतिह्य और शब्द प्रमाण। ये तीन प्रमाण का भीतर में शब्द प्रमाण जो है वेद का जो वचन है उसका नाम है शब्द प्रमाण, वही सबसे ठीक है। प्रत्यक्ष प्रमाण भी ठीक नहीं है। प्रत्यक्ष हम लोग बहुत भी वस्तु देख रहे हैं, बाकी उसको वास्तविक जो स्वरूप है उसको हम लोग जैसे सूर्य है, सूर्य हम लोग रोजाना देख रहे हैं। क्या देख रहे हैं? जैसा छोटी छोटी सी थाली जैसे देख रहे हैं, बाकी वास्तविक सूर्य का स्वरूप वो नहीं है। सूर्य का जो स्वरूप है शास्त्र अनुसार आपका जियोग्राफी का अनुसार जो लोग बड़े बड़े विद्वान है सूर्य सिद्धांत एस्ट्रोनॉमी के विषय में वो कहते हैं कि सूर्य जो है 14 लाख गुना बड़ा है। बाकी हम देख रहे हैं कि प्रत्यक्ष बड़ा, हम जो अपना सेंस अपना इंद्रिय को लगातार के जो ज्ञान लाभ करते हैं वो ज्ञान संपूर्ण है ही नहीं। इसलिए शब्द प्रमाण हमारा शास्त्र में मूल प्रमाण मानते हैं, जो वही ठीक प्रमाण है। शब्द प्रमाण जैसे वेद का वचन है वो शब्द प्रमाण है, उसको मानना चाहिए। और उसमें अनुमान और ये प्रत्यक्ष ऐतिह्य ये सब प्रमाण उसमें ठीक नहीं है। मुख्यार्थ छारिया करो गौणार्थ कल्पना, अविधा वृत्ति छारी करो शब्देर लक्षण। प्रमाणेर मध्य श्रुति प्रमाण प्रधान, जितने प्रमाण है वो श्रुति प्रमाण जो है वो सबसे प्रधान है। श्रुति जो मुख्यार्थ कहे सही से प्रमाण, श्रुति मुख्यार्थ जो मूल अर्थ है जो पढ़ करके उसी वक्त आप समझ जाएंगे वही अर्थ ठीक है। उसमें अपना मनमाफी कोई अर्थ लगा करके दूसरे को भ्रम में डालना उचित नहीं है, ये चैतन्य महाप्रभु का कहना था। जीवेर अस्थि विष्ठा दुई शंख गुमन, श्रुति वाक्य से ही दुई महापवित्र है। जीवेर अस्थि विष्ठा दुई शंख गुमन, एक उदाहरण स्वरूप दे रहे हैं। जो जीव का जो मनुष्य का समझ लीजिए और कोई जीव का समझ लीजिए, जानवर का भी समझ लीजिए, उनकी जो विष्ठा होती है और उनको जो हड्डी होती है वो अपवित्र माना जाता है। हमारा वैदिक नियम से विष्ठा जैसा हम लोग सवेरे निपटने जाते हैं उसी वक्त स्नान करने का उचित है, अगर विष्ठा स्पर्श हो गया, यदि अपनी विष्ठा है तथापि विष्ठा स्पर्श होने का कारण शरीर अपवित्र हो गया, ये हम लोग सब कुछ जानते हैं। इसलिए हमको स्नान करके पवित्र होने होता है। इसी प्रकार रास्ता में जाते जाते अगर कोई हड्डी छू लिया तो उसको हमको स्नान करना चाहिए, शास्त्र विधि है। तो चैतन्य महाप्रभु ये प्रमाण दे रहे हैं कि जीभेर अस्थि विष्ठा दुई शंख गोम, शंख ये जो सांप हम लोग बजाते हैं भगवान का मंदिर में, ये तो अस्थि एक हड्डी है, और गोबर जो है ये तो विष्ठा है कोई जानवर का। श्रुति वाक्य से भी महापवित्र, ताकि वेद कहते हैं दो चीज पवित्र, ये शंख जो हड्डी है उसमें कोई अगर इंटरप्रिटेशन करे जो भाई हड्डी तो अपवित्र है और महिला जो है वो भी अपवित्र है, ये वेद कैसे कहते हैं जो ये जो गाय का जो गोबर है वो पवित्र है और शंख का जो हड्डी है वो भी पवित्र है, कैसे माना जाए। बाकी मानते हैं हम लोग, क्योंकि वेद का वचन है, सारा हिंदू कम्युनिटी उसको मानते हैं। गोबर तो भगवान का अंग लेपन कर दिया जाता है गोबर से, गोमूत्र से, गोमय से, और शंख जो हड्डी है अच्छी तरह से भगवान का आरति के पश्चात उसको बजाया जाता है। तो वो तो हमारा विचार से यदि लॉजिक हम लोग ले आते हैं कि भाई विष्ठा हड्डी ये पवित्र कैसा हो सकता है, ये हो ही नहीं सकता। तो वो लॉजिक नहीं चलेगा। वास्तविक हम लोग क्रियात्मक जीवन में जैसा वेद बताते हैं ये पवित्र है उसको मान लेते हैं। चैतन्य महाप्रभु कहना का मतलब है कि इसी प्रकार वेद वचन मानना चाहिए, उसमें आर्गुमेंट उसमें कमेंट नहीं लगाना चाहिए। सत प्रमाण वेद सत्य जे कर लोखणा करिले सत प्रामाण्य हानि हो। साधारणतः तो हम लोग वेद का प्रमाण से ही सब कुछ ग्रहण करते हैं, जो कुछ हम लोग का नॉलेज है जैसे जैसे वेद में कहते हैं उसी को मान लेते हैं। इसीलिए जो उनका मुख्य अर्थ है उसको ही ग्रहण करना चाहिए, उसका इधर उधर कोई टिप्पणी लगा करके उसको समझना ये उचित नहीं है। जो रिसर्च करके इसका अर्थ निकालो, कोई अगर कहे जो हम लोग जानते हैं कि ये जो विष्ठा है मैला है ये जो हड्डी है ये अपवित्र है, क्यों इधर वेद में कह दिया कि गाय का जो गोबर है और शंख का जो हड्डी है ये पवित्र है, अब इसमें रिसर्च लगाओ कि क्या है सरकार, कोई रिसर्च लगाने का जरूरत नहीं है। इसलिए सतत प्रमाण, वेद वचन का सतत प्रमाण हम लोग का पंडित समाज में यही है। जो कोई अगर कोई चीज स्थापित करने को चाहते हैं वेद प्रामाणिक वचन उसमें देने से अपर जो है वो कहते हैं जो है ठीक है, वेद का प्रमाण मिला है ठीक है। जैसे लॉ कोर्ट में आप जाइए तो आप कानून का किताब से आप अगर उसमें कोटेशन दे दीजिएगा, देखिए इस कोटे इस जगह में ऐसे कहते हैं, तो जो जज है मान लेते हैं ठीक है। तो इसी प्रकार वेद का कोई परिवर्तन करने की कोई आवश्यकता है, जैसे के तैसे आप लोग अगर ले लीजिए और जैसे के तैसे आप समझ लीजिए। जैसे वेद कहते हैं कोई गौणार्थ नहीं करके केवल मुखार्थ करके तभी आपको वेद पढ़ना ठीक रहेगा, और नहीं तो आप लोग भ्रमित। वेद वेदादि शास्त्र खाली वेद का बात नहीं है, जैसे भगवद गीता है। तो इसी प्रकार जैसे भगवान कहते हैं भगवद गीता में कि मत परतरंग किंचित मत्तं परतरं नान्यत् किंचिदस्ति धनंजय। तो फिर क्यों हम लोग माने नहीं माने, जो भगवान कृष्ण को भगवान सब कोई मानते हैं, सब आचार्य लोग मानते हैं, और भगवान कहते हैं कि हमसे बड़ा और कोई है। और अर्जुन भी कहते हैं परब्रह्मा परम धाम पवित्रम परमम भगवान, अर्जुन भी मान लेते हैं। तो क्या जरूरत है जो कृष्ण का अर्थ और कुछ लगाया जाए, और कृष्ण जो कहते हैं उसका अर्थ और कुछ लगाया जाए। ये जो हमारा जो चैतन्य महाप्रभु का जो संप्रदाय है ये उसको नहीं मानते हैं, जैसा वेदादि शास्त्र में जैसे जैसे लिखा। इसलिए हम लोग भगवत गीता एज इट इज प्रचार कर रहा हूँ। आप शायद हमारा किताब देखे होंगे तो हम लोग ऐसा अर्थ नहीं लगाते हैं कि कुरुक्षेत्र का अर्थ ये होता है, पांडव का अर्थ ये होता है और कुछ होता है इधर अनशांत इधर उधर। नहीं, जैसे भगवत भगवान कहते हैं कि सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकांग शरण, हम लोग यही प्रचार कर रहे हैं सारा दुनिया में, यही प्रचार कर रहे हैं जो कृष्णस्तु भगवान से, भगवान कृष्ण जो है आप लोग भगवान को ढूंढते हैं, कोई कहते भगवान मर गया, भगवान कोई कोई कहते हैं भगवान को कहाँ ढूंढते हुए रास्ता में इतना दरिद्र लेटे हैं, यही तो सब भगवान है। तो इस प्रकार अर्थ हम लोग नहीं कहते हैं, हम लोग कहते हैं कृष्णस्तु भगवान स्वयं, जैसे आचार्य लोग कहते हैं, सब बड़े बड़े आचार्य जिसके द्वारा हमारा ये भारतीय सभ्यता शासित है, बड़े बड़े रामानुचार्य मध्वाचार्य निम्बार्क विष्णु स्वामी शंकराचार्य सब जितने हम लोग हिंदू कहते हैं, कोई कोई अपना एक चार पांच आचार्य के भीतर हम लोग मानने वाला है, तो सब आचार्य बड़े बड़े आचार्य जैसा शंकराचार्य निर्विशेषवादी होते ये भी भगवान कृष्ण को मानते हैं, जैसा भगवान सब भगवान स्वयं कृष्ण और देवकी नंद, और वैष्णव आचार्य जैसा निम्बार्क है और क्या नाम रामानुचार्य है मध्वाचार्य है चैतन्य महाप्रभु है, सब कोई मानते हैं कि कृष्णस्तु भगवान स्वयं, और शास्त्र के निर्देश है कृष्ण भगवान मूल भगवान, ऐसे भगवान का तो अनेक अद्वैत अच्युत अनादि अनंत रूप अनेक रूप है वो, बाकी मूल पुरुष जो है जो अहम आदि ही दीवाना भगवान कहते हैं, मैं सब देवता का आदि है और अहम सर्वस्व प्रभव मत्त सर्वंग प्रवर्तते इति मत्या भजन्ते माम बुधा भाव संबंधिता, ये भगवान खुद भी कहते हैं और बड़े बड़े भक्त जो हो गए हैं वो भगवान को मानते हैं, तो क्यों हम लोग कृष्ण को संपूर्ण भगवान नहीं क्यों मानते, ये कहने का मतलब इसीलिए हमारा धर्म का पतन हो गया, जो भगवान तो मौजूद है, भगवान सामने खड़ा होकर के आपको उपदेश दे रहा है और उपदेश आज तक मौजूद है, अश्विन बड़े बड़े भक्त लोग भी मौजूद है, फिर हम लोग क्यों कहते हैं कि भगवान को दिखा सकते हैं भगवान है कि नहीं और हम भगवान को मानते नहीं, ऐसे ऐसे भगवान मर गया, क्यों ऐसा बात चल रहा है, तो इसी को हम लोग चाहते हैं बंद करने के लिए, ये कृष्ण कॉन्शसनेस मूवमेंट जो है, जो भगवान है क्यों भगवान नहीं है, भगवान है और सामने आपका प्रस्तुत भी है, उनको निर्देश भी है, उनका जो उपदेश है वो भी मौजूद है और सब मानने वाले सब बड़े बड़े आचार्य जो है, आप क्यों नहीं मानते, ये हमारा प्रचार जो विचार है, आप लोग विचार कीजिए, विचार करके कृष्ण कॉन्शसनेस मूवमेंट में आप लोग सब सहयोग कीजिए, ये मूवमेंट आगे बढ़ रहा है और आप लोग अगर सहयोग करेंगे और आगे बढ़ेगा, इसके इसका फल होगा जो भारतवर्ष अभी सारा दुनिया में दरिद्र रूप से परिचित है, यदि आप एक कृष्ण कॉन्शसनेस, ये जो आपका देश में ये जो संपत्ति है कृष्णा, इसको यदि आप सारा दुनिया में देंगे, दुनिया का ऊपर उपकार होगा, आपका उपकार होगा, आपका जीवन सार्थक हो जाएगा, ये हमारा कृष्ण कॉन्शसनेस में कृष्ण क्या नाम दिया कृष्ण भावना अमृत संघ का उद्देश्य है, तो आप लोग के सामने हम लोग सब आए हैं, आप लोग पूछिए पूछताछ कीजिए अच्छी तरह से समझिए और खूब अच्छी तरह से हम लोग का साथ, नहीं तो फिर सारा दुनिया सारा भारतवर्ष वही होगा नक्सलाइट हो जाएगा, जब तक असल बात उनको नहीं सुनाएंगे तो वो तो माओ का बात इसका बात उसका मैथ क्या मार्क्स का बात यही तो सुनेंगे, कोई तो आइडल बेन देवी विश्वास था, तो इसलिए को मारूंगा आश्रित प्राग भगवान प्रहलाद मार्ग को मारूंगा आश्रित प्राग धर्मान भागवतान कौमार अवस्था से, जैसे आप लोग बहुत कुमार जिसको शादी नहीं हुआ है 15, 16, 20 उसको कुमार का कुमार कहते हैं, तो कुमार कुमार अवस्था से यानी स्कूल से ही सीखना चाहिए, कौमारूंगा आश्रित प्राग धर्मान भागवतान भागवत धर्म, भागवत धर्म ये जो भगवान क्या चीज है और हम क्या चीज है और दुनिया क्या चीज है, भगवान से दुनिया से हमसे क्या संपर्क है, भगवत भजन करने से हमारा क्या लाभ होगा, ये सब चीज समझना जो है इसका नाम है भागवत धर्म। ये तो स्कूल कॉलेज में समझेगा पढ़ाना चाहिए। बाकी क्या कहें, अंधा जधान रिपुनियो माना, हमारा सब लीडर लोग भगवान को उड़ा देने चाहते हैं, ये ठीक नहीं है। अगर लीडर लोग उड़ा देने चाहते हैं तो जो कुछ है आप लोग जो है नौजवान है इसको अच्छी तरह से समझिए। और इधर हम लोग का डॉक्टर राव साहब मौजूद है, खूब अच्छी तरह से समझिए और खूब प्रचार कीजिए यदि आप दुनिया में सुख देने को चाहते हैं, क्योंकि भगवान संपर्क नहीं होने भगवत भक्त ही न जाति जपस्तप किया अप्राण से ही देह से मंडन अंग लोग रहे, भगवत भक्तिहीन होने करके आज जातिवादी हो गए कि आप जात नेशन का उन्नति करने को चाहते हैं, कुछ उन्नति नहीं होगी, क्योंकि आप तो समझ लेते हम इंडिपेंडेंट हो गया और न जाने हमको क्या मिल गया, बाकी हम सारा दुनिया घूम घाम का है, भारतवर्ष का कोई इज्जत नहीं है, वो कहते भिखारी का देश है, गरीब का देश है, आपका एक पैसा भी वो लोग ग्रहण नहीं करते हैं, उनका कुछ कीमत है नहीं। आप इधर से नोट ले जाइएगा तो उधर एक पैसा भी नहीं बिका, कोई लेगा नहीं, और अमेरिकन का डॉलर इधर ले आइएगा उसका बैंक वैल्यू है 7.5 और 15 रुपये में बेच दीजिए, क्योंकि उसका देश का इज्जत है, आपका देश का कोई इज्जत नहीं है। आप लोग झूठ मूठ घमंड है जो हम लोग बड़ा स्वाधीन हो गया, बड़ा हम कुछ प्राप्त कर लिए, यदि आप इज्जत बढ़ाने को चाहते हैं ये कृष्ण कॉन्शियसनेस मूवमेंट में ज्वाइन कीजिए, इसको बढ़ाइए, आपको इज्जत बढ़ाए। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्ण। यस लिटिल कृष्ण, ठीक है, यही ठीक है।